शांति। ईश्वरीय पढ़ाई का पहला पाठ और पहला अभ्यास, सो अंतिम अभ्यास, देही अभिमानी स्थिति। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी गोपी दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप अफ्रीका की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। अफ्रीका के बाद आप लंदन गए, लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ते हुए बड़े हुए। 40 से भी अधिक वर्षों से आप राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और 30 से भी अधिक वर्षों से आप बाबा के घर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 25 से भी अधिक वर्षों से इंटरनेशनल यूथ फोरम से जुड़े हुए हैं। पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में आप ट्रैवलिंग करते रहते हैं। आप एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल टीचर हैं। बाहर देश विदेश में सरकारी प्लेटफॉर्मों, मंत्रालयों, व्यवसायों, संगठनों में, चाहे वो सामाजिक हो चाहे गैर सरकारी हो, सब जगह पर आप जाके या तो सेमिनार कंडक्ट करते हैं या सेमिनार में आपको आमंत्रित किया जाता है। बहुत ही प्रतिभावान व्यक्तित्व आज हमारे बीच में देही अभिमानी स्थिति पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। मधुबन का वायुमंडल ऐसा है कि जैसे आत्मा यहां पहुंचती है तो पिघल जाती है ना? संसार की बातें, संसार की प्रॉब्लम्स, परिस्थिति बहुत दूर लगती है। पांडवों के गेट्स पे नो एंट्री साइन है, माया के लिए, रावण के लिए, इसलिए यहां बच करके रहे हो। जब यज्ञ शुरू हुआ था तो नाम क्या था यज्ञ का? ओम मंडली। ओम की ध्वनि से इस यज्ञ का शुरुआत हुआ है, जो सबसे सत्य चीज है, आत्मा है। परमात्मा की शक्ति से, आत्माओं की जागृति से यज्ञ शुरू हुआ है। तो जो हम कहेंगे सोल इंपल्स, यह बीज यज्ञ का। तो जब तक हम अंदर से आत्मिक स्मृति, सोल अवेयरनेस गहराई से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हमको यज्ञ में अपनापन महसूस नहीं होता है। हम ही यज्ञ है ना, एक एक फ्लेम का टुकड़ा है, लाइट है ना। आप और बाबा के बीच में जो लाइट प्रकाश आती है, वही यज्ञ को और प्रफुल्लित करता है ना। सभी के लाइट्स मिलकर के एक बड़ा महायज्ञ बनता है ना। तो मेरा काम क्या है इस रोशनी को बढ़ाना, लाइट से काम लेना है। आज मुझे केवल विधि की बात नहीं करनी है। बहुत लोगों का प्रश्न होता है, सिस्टर हम देही अभिमानी कैसे बने? और ये जब प्रश्न उठता है ना, तो मुझे अंदर से लगता है कि आत्मा ने कुछ बात समझी नहीं है, इसलिए प्रश्न उठता है। समझो, आप चलते फिरते कोई आपको बोलेगा आप ये करेंगे, तो रिस्पेक्ट होकर के उसका रिस्पेक्ट मान देकर क्या बोलेंगे, हाँ करेंगे, लेकिन जब तक बुद्धि में बैठा नहीं है कि क्यों करना है, इसका नतीजा क्या है, हमको ये करने से क्या फायदा है, तब तक आपकी प्रैक्टिस स्थाई भी नहीं रहेगी, दावा डोल रहेंगे। तो मुझे पहले आपसे पूछना है कि आप देही अभिमानी बनना क्यों चाहते हो? क्यों देही अभिमानी बनना चाहते हो? क्या अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिकना चाहते हैं? और बाप को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, और शक्ति लेना चाहते हैं, और देही अभिमानी बनने से स्वयं पर और औरों पर उपकार कर सकते हैं, और माना यादाश्त दोबारा, स्वराज्य अधिकारी बनना है। किसको स्वराज्य अधिकारी बनना है? अच्छा, माया से दूर रहना है। किसको स्वराज्य अधिकारी बनना है? रियलिटी से हाथ ऊंचा करो। अच्छा, धीरे धीरे उठा रहे, ठीक है, समझ गई बात। हाँ, अच्छा लगता है, लेकिन बन सकेंगे या नहीं ये अलग बात है। देखो, देही अभिमानी हम क्यों बनते हैं? क्योंकि कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। कर्मातीत अवस्था ये अवस्था नहीं है कि बस आप शरीर छोड़ के चले गए। कर्मातीत अवस्था वो है कि कर्म करते हुए भी जो कर्म के जो फल का बंधन है उससे उपराम रहे। कर्मातीत अवस्था, क्योंकि यही एक जन्म है सारे चक्र में, ये 84 जन्म में हमको फुल नॉलेज मिलती है, फुल पावर मिलती है, फुल कंट्रोल मिलता है हमारे हाथ में। और नॉलेज, पावर और कंट्रोल से हम अपने कर्म बंधन को चुकतु कर सकते हैं। आपने ही 63 जन्मों के लिए अकाउंट बुक खोले, ठीक है। अभी आप ये सारे बाबा के ऊपर तो नहीं छोड़ पाएंगे क्या? कुछ तो अंदर की मेहनत चाहिए ना, ताकि योग की शक्ति से भस्म हो जाए, विकर्म विनाश हो जाए। ऐसे तो हम नहीं कह सकते चलो बाबा अंत आ गया अभी हम घर जाएंगे। बाबा कहेंगे तेरा बोझा, तुम घर लेके तो नहीं वापस आ सकती हो। चाहे तुम खुद अपने बल से चुकतु करो, मेरी याद की शक्ति से चुकतु करो, या धर्मराज द्वारा सजा खा के चुकतु करो। तो अंदर से पहले ये रियलाइजेशन होना है कि अंतिम समय में घर जाने की घड़िया है, और मुझे टाइम से पहले अपनी कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। और कर्मातीत अवस्था के हम फुल रिलेशनशिप में आते हैं हर चीज के साथ, कुछ भी बंधन महसूस नहीं करते हैं। क्योंकि हम बंधन महसूस क्यों करते हैं? क्यों बंधन महसूस करते हैं? हमने कुछ कर्म का फल खाया, या कुछ हमारी इच्छाएं हैं, ममताएं हैं? तो कर्मातीत अवस्था के कर्म करते हुए एक मास्टर की सीट, अथॉरिटी की सीट पे बैठते हुए मैं अपने कर्मेंद्रियों के साथ संबंध में आती हूं, प्यार से, धैर्यता से उसको चलाती हूं। इच्छाएं वश नहीं। पहले तो अनासक्त वृत्ति चाहिए। कुछ चाहिए क्या आपको अपने शरीर से? नहीं, ऐसे हम ऐसे तो बोलेंगे, लेकिन कल मैं आपको एक झोपड़ी में बिठा दूं, पट पे सोना है कल, कंफर्टेबल मैट्रेस, पिलो, बेड ना मिले, हा? तो क्या करेंगे? माना आज जो बाबा ने बात बताई कि तन मन धन से बलि होना है, माना पहला जो सिद्धांत है कि बाबा आप जहां पे भी बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे, हम रेडी है। तब जाकर के अनासक्त वृत्ति बनती है। जब तक आपने बाबा को ये प्रॉमिस नहीं किया है, और सहन तो बहुत करना पड़ेगा। हम जब पहले पहले सेंटर में आए थे, हमारा तो लौकिक घर बहुत शानदार था। हमारा एक ही कमरा, ये जहां पे सोफा है, सारा स्टेज लेकर के उतना बड़ा कमरा था, अटैच्ड ऑन स्वीट था। हमने कभी हमारी जिंदगी में किसी के साथ शेयर ही नहीं किया है। और जब हम सेंटर में आए तो हमारा कमरा स्टेज के बराबर था, और इसमें तीन खटियां थी, और आप रात को सो तो बाजू वाला क्या करता है? खटोरा सारी रात। दिन में सेवा करो, रात को नींद नहीं आती थी। कभी कभी होता था, अरे कहां आई हूं। हाँ, लेकिन जब बाबा के सामने जाती थी तो मुझे ये प्रॉमिस याद आता था कि आप जहां पे भी बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे, मैंने प्रॉमिस दिया है ना। चाहे मेरी जान मर जाए, चाहे मुझे कई दिनों से नींद भी ना, लेकिन मैं प्रॉमिस को तोड़ने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैंने भगवान के साथ वायदा किया है। आप सोचो, आप बाबा के साथ वायदा करो और इसको तोड़ो, इसका कल्प कल्पांतर नतीजा क्या होगा? इसीलिए एक बारी बाबा के साथ प्रॉमिस किया है, बिल्कुल नहीं तोड़ना है, सहन करना पड़ेगा। लेकिन जब दृढ़ रहते हैं प्रॉमिस पे, तो बाबा उसके लिए शक्ति भी देता है। तो मैंने ये बात बहुत देखी, अनासक्त वृत्ति, माना बुद्धि से नहीं, बस बाबा मेरा कुछ है ही नहीं, लेकिन आपकी कुर्सी कोई ले ले, ले? फिर क्या बोलेंगे? जाओ बाथरूम में, वापस आ जाओ, कोई बैठा होगा तो, अरे मेरी कुर्सी में कौन बैठा है? 10-15 मिनट कुर्सी में बैठे, आपकी कुर्सी हो गई, है ना? होता है ऐसे, ये ह्यूमन नेचर है। बहुत जल्दी कुछ चीज को हम अपना लेते हैं। तो अनासक्त वृत्ति माना मैं अपनी जीवन को, अपनी प्रतिज्ञा जो भगवान के साथ प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार मैं अपनी जीवन को चला रही हूं। चाहे मुझे मान मिले, चाहे अपना, नो प्रॉब्लम, मैं अपनी प्रतिज्ञा के आधार से जीवन जी रही हूं, ना कि किसी को दिखाने के लिए। तो पहले अंदर से चेक करो, व्हाट प्रॉमिसेस हैव आई मेड टू गॉड। ज्ञान तो बहुत सुना है, लेकिन प्रतिज्ञा कितनी हुई है? क्योंकि जब तक प्रतिज्ञा नहीं होता है, तब तक हम अपने जीवन के सिद्धांत पे नहीं चल पाएंगे, सिद्धांत नहीं बनते हैं। आप देखो हमारी दादियां, वो क्यों किसी के प्रभाव के अंदर नहीं आए थे? बिल्कुल इंडिपेंडेंट, फ्री, कर्मातीत अवस्था थी हमारी दादिया का। क्यों? क्योंकि उस सिद्धांत के आधार से चले, पूरी जीवन में उनके पास इतना बल क्यों था? खास करके दादी जानकी को नियम का बल था। सिद्धांतों पे चल करके अपने पूरे कर्मेंद्रियों को डिसिप्लिन से चलाया था, चाहे भोजन में, चाहे साधनों से, पूरा डिसिप्लिन से चलाया था, तभी जाकर के बल भरता है ना अंदर। तो प्रतिज्ञा और सिद्धांत, हमको इन दोनों ट्रैक्स पे हमारी ब्राह्मण जीवन की गाड़ी को चलानी है, क्योंकि परवरिश करने वाला बाबा है, बाबा हमको पालना दे रहा है, बाबा से हमको ज्ञान की खुशबू, ज्ञान की ताकत मिल रही है, तो हम ज्ञान से क्यों नहीं काम ले रहे हैं? बस आजकल इसको फॉलो करो, इसको YouTube पे फॉलो करो, इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो, फॉलो करने का क्या मतलब मुझे बताओ? अ ब्राह्मण इज नॉट अ फॉलोअर, ब्राह्मण इज मास्टर। मैं इस बात को अंडरलाइन कर रही हूं क्योंकि आप रियलिटी में अपना ब्राह्मण जीवन देखेंगे तो आप लिस्ट बनाओ, आज सारे दिन में आप चेकिंग करो, मैंने कहां तक कौन से प्रतिज्ञा की है दिल से बाबा के साथ, और मेरे जीवन में कौन से सिद्धांत के आधार पे मैं चल रही हूं। ये पहले ये रियलिटी चेक करो। चलो हम अभी जो पिछले जन्मों का अच्छा कर्म का फल अभी खा रहे हैं, जो आपको अच्छा घर मिला है, अच्छी परिवार मिला है, अच्छा जॉब मिला है, वो आपको पिछले जन्मों का कर्म का फल है ना। अभी वो तो कहां तक चलेगा, बस उससे ही देख करके खुश हो जाएंगे? तो इंडिपेंडेंट माना, आई लिव माय लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रॉमिस टू गॉड, नो ह्यूमन कैन इन्फ्लुएंस मी। आपने प्रतिज्ञा की नहीं है तो जरूर आप कोई ना कोई मनुष्य आत्मा के प्रभाव और कंट्रोल में आएंगे। समझ आई बात? तो ये दोनों देख करके हम आगे बढ़ते हैं ना जीवन में, तो अनासक्त वृत्ति नेचुरली हो जाती है। क्या चाहिए, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं और कुछ चाहिए नहीं। आएगा तो अच्छा है, बोनस है, नहीं आएगा तो नो प्रॉब्लम। कितनी सिंपल जीवन है हमारी। तो दिस इज फर्स्ट प्रेपरेशन। आप ऐसे देही अभिमानी नहीं बन पाएंगे, अशरीरी नहीं बन पाएंगे जब तक आपने प्रतिज्ञा का और सिद्धांतों का फाउंडेशन नहीं बनाया है। तो कर्मातीत अवस्था मींस मुझे फुली अपने कर्मेंद्रियों से के साथ एक संबंध में आकर के कर्म करना है। इसको कहेंगे सेल्फ मास्टरी, राइट? फुल रिलेशनशिप। अभी तो वर्तमान समय बंधन में है। चलो आंखें कोई वस्तु या व्यक्ति में डूबती है, आकर्षण होती है, बिना चाहते हुए भी आंखें वहां चली जाती है, इसको मास्टरी कहेंगे। फिर अचानक बैठते बैठते गोलगप्पे याद आते हैं, चलो कुछ अच्छा बना लेवे ना, या चलो थोड़ा आइसक्रीम। जीभ बताती है कहां जाना है, पैसे वहां खर्च होते हैं, इसको कहेंगे मास्टरी। अभी तो हम कर्मेंद्रियों के वश ही चल रहे हैं, अपने स्वभाव के वश ही चल रहे हैं, अपने टेस्ट बर्ड के वश, अपने फीलिंग के वश, गर्माइश ठंडे के वश, उस अनुसार चल रहे हैं। तो अंदर से जब अनासक्त वृत्ति होती है ना, तो आप कर्मों के ऊपर अधीन नहीं रहते हैं। आपको जो स्थिति, जैसी स्थिति, जो करना है, आप अथॉरिटी से करेंगे। हमने दादी जी में बहुत देखा था ये। दादी जी को जब हम भोजन परोसते थे या दादी जी भोजन पे बैठते थे तो बहनें तो अच्छी अच्छी चीज लेके आती थी, दादी ऑलवेज भोजन से पहले अपने आप को सेट करती थी। ऐसे नहीं अच्छा आंख लग गई तो खा लिया, अच्छा इसका टेस्ट अच्छा लगा तो खा लिया, क्योंकि इसका भी हिसाब बनता है, इसका भी संस्कार बनता है। तो दारी ऑलवेज अपने सीट पे सेट होकर के थोड़ा थोड़ा लेकर के टेस्ट करती थी कि मैं आत्मा मालिक, इस चीज को उठा करके मैं अपने आप को खिला रही हूं, ना कि मैं अपने जीभवश लोभवश खा रही हूं। इट्स अ स्मॉल स्विच, लेकिन ध्यान से ये स्विच होता है। अभी भोजन के समय पे आप बैठो तो अपनी सीट पे बैठ करके मास्टर के तरीके से अपने शरीर को खिलाओ, क्योंकि इसका भी एक संस्कार बनता है जो आपको मदद करेगा देही अभिमानी होने से। सिंपल बात है लेकिन ध्यान बहुत चाहिए इसमें। दादी जी जब लोगों को मिलती थी ना, तो कई लोगों की आदत होती थी कि जैसे दादी के सामने आए तो तुरंत बोलना शुरू हो जाता था उनका, दादी ये है। दादी पहले उनको शांत कराती थी, शांति से बैठो एक मिनट, दृष्टि का लेन देन करो, पहले स्पिरिचुअल कनेक्शन कराती थी, फिर 2-3 मिनट के बाद दादी बोले अच्छा बताइए क्या है। ये है रिस्पेक्ट से, खुद को रिस्पेक्ट से चलाना। आत्मा में स्पेस बहुत है तो हमको धैर्यता से काम लेना है, स्पेस से काम लेना है, शांति से काम लेना है। इट्स जस्ट अबाउट स्लोइंग एवरीथिंग डाउन, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा पॉज करो बीच में। मैंने कभी भी जितना भी वर्कलोड है दादी के ऊपर, मैंने कभी दादी को रश करते हुए देखा नहीं है, कभी नहीं। रश कराने वाले तो बहुत थे, दादी चलो जल्दी जल्दी यहां जाना है, चलो जल्दी जल्दी यहां जाना है। वो अपनी मन की अवस्था को कभी भी जल्दीबाजी नहीं करा। ये आपके हाथ में है, आप परेशान होना चाहते हो या आप शान में बैठना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। तो आपको इस जन्म का महत्व ये है कि हमको फुल सेल्फ मास्टरी मिल सकती है, हम फुल संबंध में आ सकते हैं हमारे कर्मेंद्रियों के साथ, विथ फुल लव, फुल पेशेंस, फुल टॉलरेंस। फिर हम घर जाएंगे विजय प्राप्त करके, हमारी शान में घर जाएंगे। यू अंडरस्टैंड, कैन यू सी द विजन? इसीलिए देही अभिमानी अवस्था जरूरी है। कर्मातीत अवस्था के लिए आप लगन पैदा करो कि मुझे मेरे कर्मेंद्रियों वश नहीं चलना है, लेकिन मालिक होकर के उसको चलाना है। और आप देखेंगे कर्मातीत अवस्था वाली जो आत्मा है ना, भल बीमारी भी होंगी लेकिन वो भी अपने कर्म के हिसाब किताब का जो सफरिंग होता है ना, उससे भी पार होगा वो। ये प्रैक्टिकल प्रूफ दादी जी ने दिखाया है हमको, बचपन से लेकर के दादी के कितने हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, लंग का प्रॉब्लम्स था, खांसी था, यहां स्टर्नम है ना इसमें क्रैक था, बहुत प्रॉब्लम्स थे दादी को। लेकिन जैसे बिल्कुल रुई बराबर कुछ हुआ ही नहीं। कभी कभी रात को इतना दर्द होता था, सोच रहे थे कि दादी उठ पाएंगी सवेरे, सवेरे उठती थी सभी को बादाम देती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने स्वाहा कर दिया ना, ये मेरा तन नहीं है, मैं ट्रस्टी हूं, इसको चलाना है तो चलाएगा। 104 तक चलाया बाबा ने उस शरीर को, 104 तक चलाया। दादी ने बीच में ऐसा संकल्प ही नहीं किया था कि क्या होगा, अभी 100 तक पहुंची हूं, अभी चलेंगी, चल पाएंगी, नहीं चल पाएंगी, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी बारे हॉस्पिटल में जाना हुआ होता है, मैं थक गई हूं, कभी भी ऐसा संकल्प नहीं किया है। ट्रस्टी ऐसा संकल्प नहीं कर सकता है। बाबा को जब आपको लेके जाना है तो लेके जाएगा, बाबा को जो सेवा करानी है वो कराएगा। तो यू हैव टू क्रिएट दिस विजन ऑन द इनसाइड कि मुझे एक ट्रस्टी होकर के रह करके मुझे कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। इसकी लगन, इसकी विजन पहले आप पैदा करो। कुछ भी हो जाए, मुझे बंधन मुक्त बनना ही है टाइम से पहले। और अशरीरी का जो अभ्यास होता है ना, जो एक सेकंड वाणी में आओ, और दूसरा सेकंड वाणी से परे, एक सेकंड बाजा का सपोर्ट लो, दूसरा सेकंड ये तो हम क्लास करते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सपोर्ट ले रहे हैं ना इसका, फिर बीच में सपोर्ट छोड़ दो थोड़े समय के लिए। कभी कभी क्या होता है, हम कर्म करते हैं साथ साथ में कर्म का फल भी खाते हैं, अच्छा लगता है, और कर्म में फंस जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, और हम सोचते हैं चलो बस ये कर लू ना, कर लू ना, कर लू ना, बाद में देखती हूँ ना, बाद में बैठती हूँ ना, कर लू ना, ये होता है ना। तो वो जो कहते हैं ना इंग्लिश में हैमस्टर व्हील, फिर उसके बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर आपने अपने कर्मों का फल में आपने अपने आप को बांध दिया कि मैं फल के आधार से आगे बढ़ रही हूं, ना कि अपनी मेडिटेशन के आधार से। मेडिटेशन से ही परफेक्शन मिलती है, ना कि कर्मों से, कर्मों के फल से। इसलिए आजकल संस्था में, दुनिया में तो सोशल सर्विस माना कर्मों के फल से लोग जी रहे हैं। हमारे रिट्रीट सेंटर में तो बहुत सारे सोशल वर्क मैनेजर्स के रिट्रीट बहुत होते थे, और सबसे बर्नड आउट ग्रुप यही होता था। फ्राइडे को आते थे, इसकी शिकल देखनी चाहिए, इतने डिप्रेशन में होते थे, इतने थका। मैंने सोचा आप लोग सोशल सर्विस करते हो, इतने थक क्यों कैसे जाते हो? माना अभिमान सेवा का नाम लेकर के अपना काम कर रहा है, आप सेवा का फल खाते रहो खाते रहो, और आप सोचते बस मैं सेवा करती रहो करती रहो करती रहो, मुझे और मिलेगा, और उसका अंत मिलता ही नहीं है, संतुष्टता होती नहीं है, अंदर से शांति की शक्ति जमा नहीं होती है। सो कैन यू डिटैच फ्रॉम ईटिंग फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन? दिस इज देही अभिमानी अवस्था। समझो ये क्लास पूरा हुआ, फुल स्टॉप, टू द पॉइंट आ गए, अभी सागर में फेंक दो, आगे बढ़ो। एक संकल्प भी उठना नहीं चाहिए, कितना अच्छा क्लास था। समझ में आए? क्योंकि वो अभिमान का पूछ सूक्ष्म वतन तक पहुंचता है, पता है? आप योग में बैठेंगे, अच्छा अनुभव होगा, ऊपर जाएंगे, कितना अच्छा अनुभव हो रहा है। क्यों? टू द पॉइंट आ गए, छोड़ दो, अभी सागर में फेंक दो, उसका रस क्यों लेना है? तो जब हम अंदर से ये प्रैक्टिस करेंगे कि कर्म
जो भी हम कर्म करते हैं उसको तुरंत सागर में फेंक दो और सागर का रस लो, तो आपको बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति चलाएंगी कर्म करते हुए। समझ में आई बात? और कर्म से पहले और कर्म करने के बाद बुद्धि को अशरीरी बना दो, बिल्कुल ख्यालात खत्म। देखो, हम कर्म करने से पहले कभी कभी सोचते हैं मुझे ये करना है, उसका भी खत्म। क्या मुझे करण करावनार करा रहा है? अपने सीट पे सेट होकर के देखो, साक्षी होकर के देखो क्या होगा, देन अप्लाई योरसेल्फ। और जैसे पूरा होता है फुल स्टॉप दे दो ऊपर, तभी आप देखेंगे ऑटोमेटिक बाबा की शक्ति आपको चलाएंगी। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, क्योंकि हम देही अभिमानी नहीं, उसकी प्रैक्टिस हमारी स्थायी नहीं रहती है, क्योंकि अभी भी हम बहुत आदती है कर्मों का फल का खाने का। You understand? We are living off temporary fruit. इसीलिए भगवान का रस ऐसे महसूस नहीं होता है कि मुझे बाबा खिला रहा है, बाबा चला रहा है, क्योंकि आप अपने कर्मों के फल के आधार से चल रहे हो ना। दूसरी बात है कि कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे मन में, मन के जो संस्कार है वो दूसरे व्यक्ति के संस्कार के टकराव में आ जाता है ना। मन में थोड़ा युद्ध चलता है ना, कभी किसी के साथ बनता नहीं है, हमारे मन के संस्कार इसके साथ मैच नहीं होते हैं, टकराव होता है। तो जो कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा है ना, वो उस टकराव के कंट्रोल में नहीं आएंगी, धैर्यता से, सहनशीलता से उसको समाप्त कर लेंगी। समझ में आई बात? ये मैं एक विजन क्रिएट करना चाहती हूं पहले, प्रैक्टिस से पहले क्या विजन है कर्मातीत अवस्था की। होगा, हिसाब किताब है, लेकिन हम उस हिसाब किताब के कंट्रोल के वश नहीं चलेंगे। ये नतीजा, ये पॉसिबिलिटी, ये विजन रखना है आपके सामने, धैर्यता से, सहनशीलता से सब कुछ प्रत्यक्ष होता है, आप पे ही रिजॉल्व होता है। लेकिन वो टकराव चल रहा है मन में और हम और संकल्प पैदा करते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहां से चले जाना है, मुझे इसके साथ काम नहीं करना है, जैसे रिएक्शन वाले संकल्प होते हैं ना, कुछ अच्छा नहीं लगता है, और हम और इसके कंट्रोल में और आ जाते हैं, परेशानी और पैदा होती है अंदर से। समझ रहे हैं बात मेरी? अभी बाबा ने हमको बहुत ही सारे ड्रिल्स के अभ्यास बताए हैं, बहुत वैरायटी ड्रिल, क्योंकि ड्रिल अपनी बुद्धि की एक्सरसाइज है, अंडरस्टैंड, ताकि बुद्धि कई जगह अटके नहीं, चटके नहीं, लटके नहीं, बुद्धि को फ्री रखना है और बुद्धि को ताकत वाली बनानी है। तो जैसे शरीर का एक्सरसाइज करते हैं, बुद्धि की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, जहां पे भी आपका ध्यान ज्यादातर जाएगा ना, वहां से प्रभाव का दरवाजा खुलता है और फिर आप अधीन बन जाते हो, इसके वश में आ जाते हो, इसके कंट्रोल में आ जाते हो बिना चाहते हुए भी। इसीलिए ड्रिल का मतलब ये है कि बुद्धि को एकाग्र बना करके एक के रस में बिठा देना उसको, ताकि बुद्धि से काम तो लेना है लेकिन लाइटली, हर बात में लाइटली, कई जगह पे फंसे नहीं बुद्धि। और वो जो एक का रस है वो बुद्धि को चलाएगा, बुद्धि को शक्ति देगा, बुद्धि को क्लैरिटी देगा, रोशनी देगा। इसलिए मम्मा कहती थी ना, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो आपको डेफिनेटली एक या दूसरा ड्रिल तो पकड़ना ही पड़ेगा। और इतने वैरायटी बाबा ने दिए हैं। देखो कभी कभी सहर करना अच्छा लगता है तो जाओ यहां से सूक्ष्मवतन, सूक्ष्मवतन से मूलवतन, पूरा संसार घूमो बाबा के साथ, गुड विशेस फैलाओ। कभी कभी पॉइंट फॉर्म तो रिलैक्स होकर के अपने आप को बिल्कुल अपनी पूरी एनर्जी को मर्ज करके पॉइंट फॉर्म बन जाओ, बिंदु रूप बन जाओ। कभी कभी साक्षी दृष्टा की सीट ले लो, मीटिंग में बैठे हैं तो उस समय तो बिंदु रूप नहीं हो सकते हैं, कारोबार है तो उस समय साक्षी दृष्टा का सीट ले लो, साथी के साथ बैठ करके साक्षी होकर के सब कुछ देखो। फिर घूमते फिरते निराकार फरिश्ता, अभी अभी घर, अभी अभी आकर के कर्म किया, फिर वापस। इतना अच्छा लगेगा अंदर से, जैसे आपकी फीलिंग्स बहुत सरल बन जाएंगी, बहुत शीतल बन जाएंगी। आपको लगेगा कि मैं एक छाया के नीचे सदा रह रही हूं, इतना अच्छा लगेगा अंदर से। लेकिन बुद्धि मैली हो जाती है ना, तब फीलिंग में मिक्सचैरिटी आती है। तो एक एक ड्रिल हमारी बुद्धि को साफ करता है, एकाग्र करती है। और हरेक को अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा। देखो मैंने सभी बड़ों से यही प्रश्न पूछा है बार बार, आपका तरीका क्या है? दादी जानकी का तो 5 स्टेप का प्रोसेस था उपराम वृत्ति बनाने के लिए। पहले कर्मेंद्रियों से डिटैच, फिर अपने आप को न्यारा महसूस करो, मैं एक न्यारी प्यारी आत्मा हूं। और फिर पूरी अपनी एनर्जी को एकाग्र करके साक्षी की सीट पे बैठो, डीप जाओ अंदर, फिर साक्षी के बाद दृष्टा बन जाओ, जैसे देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो। और फिर और डीप चले जाओ, उपराम चले जाओ, बिल्कुल विदेही। दादी बीच बीच में अपने आप को ये ड्रिल कराती थी। हमारे भाई साहब निर्वैर भाई सवेरे उठ करके आधा घंटे के लिए इनकी प्रैक्टिस क्या होती है, पहले जो भी साकार बाबा के साथ अनुभव रहे हैं वो याद करते हैं, बचपन के दिन को याद करते हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ मिलन करते हैं, फिर परम धाम में जाकर के लाइट माइट बन करके सारा विश्व का सैर, फिर वापस इस बॉडी में आते हैं तो टोटल बॉडी को लाइट माइट देकर के वापस बॉडी में प्रवेश करते हैं। हर रोज विदाउट फेल ये उनकी प्रैक्टिस है। तो मैंने भाई साहब को पूछा, भाई साहब इसका नतीजा क्या हुआ है? कहते हैं कि मेरी फीलिंग सभी के प्रति बहुत अच्छी रहती है, भले वो कैसी भी स्थिति में मेरे पास आए, एक प्रकार की इम्यूनिटी बढ़ी है। जो लोग आते हैं अपनी नेगेटिविटी को लेके आते हैं उसका असर नहीं पड़ता है, अपने आप के लिए। अब सारे ड्रिल्स को देखो, इसमें से एक या दो पसंद करो जो आपके लिए जरूरी है और इसमें आप मास्टरी। समझ में आई बात? क्योंकि एक ड्रिल दूसरी ड्रिल से कनेक्ट है, एक स्थिति दूसरी स्थिति से कनेक्टेड, एक का दरवाजा खोलेंगे दूसरा ऑटोमेटिक खुल जाएगा, लेकिन एक दो में मास्टरी करो। और मैं कहूंगी कि जब हम अनासक्त वृत्ति से चलते हैं, हमारी प्रतिज्ञा से चलते हैं, हमारे सिद्धांतों पे चल रहे हैं, तो अंदर से कुछ मेहनत नहीं लगता है, जैसे कोई शक्ति चला रही है ऐसे फीलिंग आती है। फिर देही अभिमानी बनना माना एक सेकंड में मैं बाबा बाबा बोलूं, जैसे कोई बच्चा बाबा की गोद में बैठा होता है ना, सब कुछ भूल जाता है। जो गोद का प्यार, जो बाबा का गोद बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें सब कुछ भूल जाता है। इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है बस बाबा शब्द बोलने से। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये केवल एक साइंटिफिक प्रैक्टिस नहीं है, आपको एक ब्रॉडर पिक्चर में आपकी जीवन कैसी होनी चाहिए संगम युग में, इसीलिए तो आप प्रैक्टिस अपना रहे हैं ना। बिना विजन से आप कुछ भी प्रैक्टिस करेंगे उसका सक्सेस नहीं मिलता है। तो मैंने तो बाबा को बोला है कि बाबा मुझे तो संगम युग मेरा तो सबसे बेस्ट एंड होना चाहिए, क्योंकि मेरा सबसे बेस्ट बिगिनिंग होगा। तो इफ आई वॉन्ट टू लीव माई स्टोरी, आई वॉन्ट टू लीव इट वेल। जैसे कोई पक्का फल होता है ना, उससे बीज जल्दी निकल जाता है, वैसे बिल्कुल इजी और फुल हैप्पीनेस, फुल जॉय, फुल लव। मुझे ऐसे शरीर छोड़, मैंने फिक्स कर दिया है, इसलिए हम निश्चिंत बैठे हैं। इसलिए बार बार मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे अशरीर बनना है, वो अवस्था मुझे खींचती है, क्योंकि मैंने मेरा अंत फिक्स कर दिया है। अभी आपने आपका अंत फिक्स किया है? तो आज तो पहला वो होमवर्क करना पड़ेगा। If you haven't decided how you're going to die, then how are you living? बस आधा ही बलि, पूरा बलि नहीं चढ़े अभी तक। सब बात में आधा आधा करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। तो इसीलिए fix your end. फिर आराम से ब्राह्मण जीवन में ऑटोमेटिक वो बातें आपको अंदर पुल करेंगी, खींचेंगी। नहीं, हमारा ब्राह्मण कल्चर एक इतना सुंदर स्पिरिचुअल कल्चर है, सोल कॉन्शियसनेस का कल्चर है। और सचमुच आपको देही अभिमानी बनना है तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, आप अपने मोबाइल फोन को फेंक दो, आप सोचो ना, कोई दो व्यक्ति के बीच में कोई फोन लेके खड़ा है, अरे मैं सामने खड़ी हूं फिर भी आपको फोटो चाहिए? तो दृष्टि का लेन देन कब होगा, वो अनादि थप्पा कब लगेगा, उस रूहानी संबंध का सुख कब लेंगे आप? मोबाइल फोन द्वारा? नहीं हो सकता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप स्पिरिचुअल नहीं बन सकते हो विथ अ मोबाइल फोन। यू हैव टू बिलीव इन द फ्लेम, अंदर की शक्ति से काम लेना है। मैं आत्मा एक शक्ति हूं, इन कर्मेंद्रियों द्वारा, आंखें द्वारा मैं आपको पहचान रही हूं। सत्य क्या है? सत्य ये कनेक्शन है, और ये कनेक्शन अनादि है। मुझे अनादि चीजों से काम लेना है, तब मेरी जीवन मैं सत्यता के आधार से चला सकती हूं। शुरू शुरू में जब ईमेल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो हमको तो बाय फैक्स मिलता था मधुबन की मुरली, वो भी उन दिनों में दो दिन के बाद मिलता था, और वो उसी दिन अमृत वेले के बाद हमको बाय फैक्स मिलता था। लंदन में आता था, वहां से ट्रांसलेशन होकर के फिर सभी जगह जाता था, और हिंदी मुरली से हम डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन करते थे, क्योंकि वही मिलता था हमको। और अंदर से रुचि होती थी, बाबा आज क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इतना अलर्ट होकर के बैठते थे। अभी मुरली चालू माल है, सभी ने पढ़ लिया, सुन लिया आने के समय, फिर आकर के लोहरी सुनो। वो जो अंदर की आत्मा की जो रुचि होनी चाहिए ना, किसके सामने बैठी हूं बाबा आज क्या सुनाएगा, वो नहीं रहती है। इट्स लाइक अ डेड रिलेशनशिप। जैसे रिलेशनशिप डल हो गया होगा ना, ऐसा होता है, बस चलते हैं ना, चलो चलते हैं ना, चलो हाय हेलो, अच्छा लगा ना, चलो चलते हैं ना। वो जो हम कहेंगे पैशनेट रिलेशनशिप है बाबा के साथ, ये साधनों से अधीन होने के कारण ही हमारी पैशन कम होती है, क्योंकि ये चीज जड़ चीज है। आप सारा दिन जड़ के ऊपर ध्यान देंगे तो बुद्धि भी जड़ बन जाती है, डल बन जाती है। आप देखो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, थोड़े समय के लिए आप स्क्रीन पे देखो, आधा घंटा एक घंटा, बाद में बुद्धि में जो रौनक और अलर्टनेस होनी चाहिए वो नहीं होती है। जैसे कुछ अच्छा लगा, लेकिन आप खुद अपने सेंसेस को दबा रहे हो। ये चीज हमको सेवा के लिए मिली है, बाकी और बातों में बुद्धि से काम लेना है, योग बल से काम लेना है। मैं जब बाबा के कमरे में बैठती हूं ना, ज्यादातर मैं देखती हूं लोग बैठते हैं घुंघरे डाले हुए होते कान में, सोचते हैं हम कुछ क्लास सुनेंगे बाबा के कमरे में, या कुछ गीत द्वारा फिर हमारा योग लगेगा। अरे आप बाबा के हो, बाबा आपका है, और आप अपनी बुद्धि द्वारा बाबा के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्या? ये कितनी हंसी की बात है कि मैं आपको बोलूं, अच्छा ठहरो एक मिनट, मैं गीत बजाती हूं फिर आपके साथ बात करती हूं। प्रैक्टिकल में कितना नॉनसेंस की बात है। तो बाबा के कमरे में जाकर के क्यों करते? बाबा इज अ लिविंग बीइंग। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? थोड़ा विजन पैदा हुआ है, समझ में आई है बात? कर्मों के फल के आधार से जीवन को नहीं चलाना है। कर्म करो छोड़ो, बाजा का सपोर्ट लो छोड़ो, तब जाकर के एक का रस आपको चलाएगा। देही अभिमानी स्थिति नॉट डिफिकल्ट, इज नेचुरल। डिफिकल्टी तब आती है क्योंकि हम फल खा रहे हैं, आकर्षण हो रहे हैं, अधीन हो रहे हैं, मजबूरी से चल रहे हैं। अंडरस्टैंड? अभी हर कर्म में, अभी आप यहां आए हो, ये एक क्या कहेंगे, गुफा है मधुबन। अंतर्मुखी होकर के अपने आप को ऑब्जर्व करो, चेक करो हर बात में। भोजन खाते समय, जब भी आप किसी के साथ वार्तालाप में हो, तो कोई और दूसरे दो लोग चटपटी बातें कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपको, मैं जाके सुनूं, मैं जाके और इसमें मिर्च मसाला डालूं? रोको अपने आप को, अपने कर्मेंद्रियों से धैर्यता से चलाओ, रिस्पेक्ट से चलाओ। तब आप कुछ भी पार कर सकेंगे। ओके, ठीक है ना? अंडरस्टैंड? जिसने समझा हो वो हाथ ऊंचा करे। ओके, थैंक यू। बाबा आपको अशरीरी बना देगा, बाबा ही आपको चलाएगा, आपको केवल अपने आप को शांति से, धैर्यता से चलाना। ओके, ओम शांति।
चलो पार गगन, वही
तो सभी ने पहले अभ्यास सो अंतिम अभ्यास को अच्छी से समझा। एक हाथ हिलाकर पुनः पुनः दीदी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।